ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है। लाओ की राजधानी वियंचन में भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांतिप्रिय राष्ट्र हैं और एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों में मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत और आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और आसियान देशों के महत्व पर श्री मोदी ने कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार पिछले 10 सालों में दोगुना होकर 13 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत अगला वर्ष आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी संयुक्त गतिविधियों के लिए भारत 50 लाख अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या और भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का प्रावधान दोगुना किया जाएगा। भारत और आसियान देशों ने सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा बरकरार रखने और इन्हें बढ़ावा देने की दोबारा पुष्टि की है। आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य में भारत और आसियान देशों के नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में देशों के आचरण संबंधी घोषणा के पूर्ण और प्रभावी अमल पर प्रभावी और ठोस आचार संहिता जल्द बनाए जाने की आशा व्यक्त की। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिज्ब उत तहरीर और इसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि हिज्ब उत तहरीर कथित तौर पर युवाओं को आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेल सेवा साहिबगंज को हावड़ा से जोड़ेगी, जो 125 रुपए के किफायती किराए पर केवल 7 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। इस सेवा के शुरू होने से न केवल यात्रा सरल होगी बल्कि क्षेत्र में व्यापार के अवसर और रोजगार भी बढ़ेंगे। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का अंतिम संस्कार वरली स्थित शमशान घाट पर कर दिया गया। इससे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर शाम 4:30 बजे तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉ राजेश सागर ने तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ज्ञानप्रद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 50% मानसिक स्वास्थ्य विकार 14 वर्ष की आयु से पहले ही दिखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में सामान्य तनाव का कारण शैक्षणिक दबाव, माता पिता के आपसी झगड़े और बाहरी व्यक्तियों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाना होता है। कार्यशाला में मानसिक दबाव से निपटने और खुशहाल बचपन को बढ़ावा देने के लिए बोध पुनर्संचरित करने और गहरी सांस लेकर स्थिति का सामना करने जैसे प्रभावी उपाय बताए गए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में पुलिस उपायुक्त डॉ रश्मि शर्मा यादव ने बच्चों के लिए साइबर स्वच्छता और सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत को चीनी ताइपे से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के 42वें नंबर के खिलाड़ी अंचत शरत कमल को दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के यून जू लिन से पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।